जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
परिव्राजक आचार्य अष्टादशक शिखर मंदिर के वायन जैसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के श्री राध गोविंद देव के श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के श्री पंच तत्व के पिताय गौर प्रेमानंदे ऑल बेस्ट असेंबली होली ऑल बेस्ट असेंबली होली ऑल बेस्ट असेंबली होली श्री गुरु एंड गौरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। मुनया साधु पृष्टोहं भवद्भिर्लोकमंगलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा सुप्रसीदति। मुनया साधु पृष्टोहं भवद्भिर्लोकमंगलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा सुप्रसीदति। मुनया साधु पृष्टोहं मुनया साधु पृष्टोहं मुनया साधु पृष्टोहं शब्दार मुनया हे मुनियों साधु प्रासंगिक है। पृष्ठ पूछा गया अहम मैं भवद्भिः आप लोगों के द्वारा लोक संसार मंगलम मंगल यत् क्योंकि कृतः बनाया गया कृष्ण भगवान संप्रश्न संगत प्रश्न एना जिससे
आत्मा
स्व
सुप्रसीदति
पूर्णतया
प्रसन्न होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। मुनया साधु पृष्टोहं भवद्भिर् लोकमंगलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियो, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो ये भागवतम के पहले स्कंद का दूसरा अध्याय है और आपने सुना है श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय में इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते थे कि ये जो भागवतम फर्स्ट कैंटो है उसका जो दूसरा अध्याय है वो सबको याद होना चाहिए, विशेषतः जो सन्यासी हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ये दूसरा चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का। हाँ, जो दिव्यता तथा दिव्य सेवा, भगवान की सेवा सर्वोत्कृष्ट रूप से कैसे की जाए, इसकी स्थापना इस अध्याय में की जाती है। और आपने पहले सुना है पिछले अध्याय में कि किस प्रकार भागवतम के बारे में जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे तो वो सूत गोस्वामी को 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं नैमिषारण्य के स्थान में। और इस दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही, जैसे आज के श्लोक में कल के श्लोक से पहले प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे सूत गोस्वामी, तो वो 6 प्रश्न क्या थे जिनका वर्णन पहले अध्याय में है और पूरा जो भागवतम है वो इन 6 प्रश्नों पर आधारित है। तो हम देखेंगे कि जो सारे शास्त्र है उनमें प्रश्न है और उत्तर है। तो कोई भी हम ग्रंथ खोलते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें यही हमें मिलता है। तो आचार्यगण जो श्रीमद् भागवतम है उसका गुणगान करते हैं और वो कहते हैं कि भागवत शास्त्र से भक्तिर तत्व कहे ते भागवत सम कौन शास्त्र ने, कि भागवतम केवल भक्ति तत्व की व्याख्या करता है और श्रीमद् भागवतम के अलावा कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ जो शास्त्र है वो अस्तित्व में नहीं है। और इसकी रचना व्यास देव ने सारे ग्रंथों का प्रणयन किया तो उसके बाद सबसे अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं श्रील व्यासदेव, और ये करने मात्र से वो अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ शब्द है एनात्मा सुप्रसिद्धति, तो वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर चारे वेद दधि भागवत नवनीत, कि जो चार वेदाज हैं, चार जो वेद हैं उनकी तुलना दधि या दही से की गई है। हाँ, और भागवत क्या है, नवनीत है, नवनीत का मतलब है माखन है। हाँ, भागवतम मथे लेना शुके खाई लेना परीक्षित, कि इसको मथा था, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि मदर यशोदा ने कृष्ण के लिए मक्खन निकाला था मथकर, तो उसी प्रकार श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उसका मंथन किया और जो राजा परीक्षित थे उन्होंने इसका आस्वादन किया। तो भागवतम के गुणगान को हमें सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवतम की हर समय प्रशंसा करनी चाहिए, उनके ग्लोरीज को दोहराना चाहिए। ऐसा करने से हमें श्रीमद् भागवतम की कृपा मिलती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि भागवतम कृष्ण का इनकार्नेशन है। भगवान का दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं धर्म ज्ञानादि भी सहा, भगवान अपने धाम ले जाते हैं धर्म और ज्ञान को, तो कलो नष्ट दृशाम, कि कलयुग में सबकी दृष्टि खत्म हो जाती है और अंधकार छा जाता है, तो ये श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण ही है, और वो भागवतम टॉर्च लाइट के समान काम करता है इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए। तो भागवतम के इस पहले अध्याय में जो शौनक ऋषि ने सारे बाकी मुनियों का या ऋषियों का प्रतिनिधित्व किया था, और शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछे थे, तो वो 6 प्रश्न पूछे थे, तो अलग अलग श्लोकों में उन प्रश्नों का वर्णन आता है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि मंगल क्या है, सारे जो लोग हैं जीव है उनके लिए शुभ क्या है, और उसके साथ साथ दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि इतने सारे शास्त्र है उनमें से जो महत्वपूर्ण उपदेश हैं जो हमें संतुष्ट कर सकता है सारे जीवों को, वो हमें बताइए। और वो फिर तीसरा प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है कि कृष्ण जो देवकी के गर्भ में उन्होंने शरण ग्रहण की, या देवकी के गर्भ से क्यों वो प्रकट हुए। और चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि अवतार, अवतारों का वर्णन करिए और उनकी लीलाएं बताएं। तो फिर पांचवा प्रश्न पूछते हैं, तो एक एक श्लोक में इन प्रश्नों का प्रश्न पूछा है, और दूसरे अध्याय में सारे, दूसरे और तीसरे अध्याय में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, और उन्हीं प्रश्नों को श्रीमद् भागवतम में आगे चलकर विस्तार रूप से जो सूत गोस्वामी हैं वह वर्णन करते हैं। और जो चौथा या पांचवा प्रश्न है वो पूछते हैं कि आप जो परम भगवान कृष्ण हैं उनके विशेष लीलाओं का वर्णन करिए ताकि हम उसको सुनना चाहते हैं। और आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में अपने धाम चले गए हैं, तो कहते कि धर्म कम शरणम गता, तो भगवान चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न वो पूछते हैं पहले अध्याय में, और इस दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। तो सूत गोस्वामी अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सीखा था, शुकदेव गोस्वामी से, सूत गोस्वामी वैसे कोई ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो सबसे आगे बैठे थे परीक्षित के थोड़े नज़दीक ही, और शुकदेव गोस्वामी से वो सुन रहे थे, और वो सुनकर उन्होंने जो शुकदेव गोस्वामी से सुना था उसको दोहराना शुरू किया, रिपीट करना शुरू किया। तो यही एक योग्यता होती है जो वक्ता होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु का प्रथम योग्यता क्या है कि वो अपनी चीज़ ऐड नहीं करता है और निकालता नहीं है। जो प्रीवियस आचार्यों ने या जो पहले आचार्य गण हैं या शास्त्रों की बातें हैं उनको यथावत प्रस्तुत करता है या पोस्टमन का काम करता है, तो उसी प्रकार सूत गोस्वामी जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी से सुना था उसका भी रिपीट करना शुरू कर रहे हैं अपने अनुभवों के साथ साथ। हाँ, तो वो सबसे पहले अपने जो गुरु है शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, हाँ, श्लोक नंबर 2 और 3 में, और श्लोक नंबर 4 में भी आपने कल सुना होगा, हाँ, कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुदिरेत, कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ श्रील व्यास देव को जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, और जो विद्या की देवी हैं सरस्वती और नर नारायण ऋषि, हाँ, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसके बाद आज के श्लोक में सूत गोस्वामी उन प्रश्नों को अप्रिशिएट करते हैं जो प्रश्न पूछे थे, हाँ, उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर उन प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं कल के श्लोक से। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सारा संसार प्रश्न तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्न तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में न हो प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार वकील तथा विद्यार्थी भी क्रमशः कचहरियों तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं, और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंश मात्र तुष्ट नहीं होते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं, मित्र पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक लक्ष्य बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषय प्रश्न तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार सारा जो जगत है वो सुबह से शाम तक प्रश्न और उत्तरों में लगा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रश्न उत्तर नहीं कर रहा है। जैसे प्रभुपाद ने कई यह उदाहरण दिए हैं कि जो सांसद होते हैं, स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं, वकील होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो ये सारे लोग दिन भर प्रश्न उत्तर में लगे हैं। लेकिन इनके जो प्रश्न और उत्तर है ये क्या है कि इस जगत में बांधने के लिए हैं। लेकिन यहाँ सूत गोस्वामी उन प्रश्नों का वर्णन करते हैं कि ऐसे प्रश्न जिनका संबंध किस चीज से है, हाँ, कृष्ण संप्रश्नों, कृष्ण के संबंध में है। तो इसीलिए जो शिष्य होता है उसका ये महत्वपूर्ण योग्यता होती है। क्या है? हाँ, जब वो कोई व्यक्ति तभी योग्य है गुरु के पास जाने के लिए जो ये अनुभव करता है कि ये जो जगत है मुझे रंच मात्र भी सुख प्रदान नहीं करेगा, और ये जो जगत है हाँ केवल हाँ कष्ट प्राप्त करने के लिए है। ये जिसने अनुभव किया है इस जगत का जो स्वभाव को, तो वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहा है कि वही व्यक्ति क्वालिफाइड है गुरु को अप्रोच करने के लिए। इसलिए जो नवयुगेंद्राज है वो कहते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्यतम जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि उस व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए। किस चीज़ की जिज्ञासा करनी चाहिए? श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए। हाँ, जिज्ञासम श्रेय उत्तमम। उत्तमम मतलब होता है कि उन्नत, हाँ, या ऊपर ले आने वाला, और तम मीन्स नीचे। तो एक होता है उत्तम और एक होता है तम। तो ऐसी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए जिसके द्वारा हमारी अधोगति हो। तो ये सब क्या है? सुबह से शाम तक सांसारिक जीवन में व्यक्ति प्रश्न और उत्तरों में लगे हैं, तो इनकी जिज्ञासा अधोगति की ओर ले जाने वाली है। लेकिन जो शिष्य है या जो आध्यात्म जीवन में उन्नति करना चाहता है तो उसे उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे एक है श्रेयस और एक है प्रेयस। तो श्रेयस का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, या वास्तविक मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और दूसरा होता है प्रेयस। प्रेयस क्या है कि भौतिक चीज़ें वो प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए वो प्रश्न और उत्तर करता है। तो हमें जिज्ञासा क्या करनी चाहिए जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि कामश्च न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावत, कि व्यक्ति को ये लक्ष्य बनाकर जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर उसकी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? जीवश्च तत्व जिज्ञासा नार्थयच्च कर्म भी, कि उसकी जो जिज्ञासा है वो परम सत्य के विषय में या भगवान के विषय में जानने के लिए होनी चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथा का मतलब होता है कि आपको अभी शरीर मिला है, इसलिए वो कहते हैं अथा तो अभी क्या करो? जिज्ञासा करो। कैसी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ऐसी जो सर्वोच्च जिज्ञासा है वो हमें करनी चाहिए और जिसके द्वारा हम हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको जान सकते हैं। जिज्ञासा से ही हम अनुभव कर सकते हैं या जान सकते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है श्रील सनातन गोस्वामी का, कि श्रील सनातन गोस्वामी बल्कि नवाब हुसैन के वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, तो लेकिन फिर भी जो भौतिक चीज़ों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। संपदा, कंफर्ट या फिर और फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन फिर भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं थी। इसलिए वो क्या करते हैं? सारी चीज़ों को त्यागते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर अपने हृदय को ओपन करते हैं और कहते हैं कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, देखो मैं विषय का जो विषय गर्त में गिरा हो, विषय गर्त का मतलब होता है कि विषय जो उनका जो गड्ढा है उसमें गिरा हो, मेरा मन हर समय भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है और मैं जो संतुष्टि है वो इस भौतिक चीज़ों में ढूंढ रहा हो या उनमें देखता हो। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेकर वो कहते हैं अपना रहिता हित किछु नाही जानी ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताये सत्यमानी। तो इतने विनम्र और बल्कि इतने विद्वान थे, ऐसे कि सनातन गोस्वामी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। हाँ, सनातन गोस्वामी जानते थे लेकिन वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो डिसाइपल होता है उसका एटीट्यूड क्या होता है। हाँ, जो शिष्य होता है जब गुरु के सामने जाता है हाँ, तो वो ये प्रकट करता है कि मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता हूँ हाँ, तभी वो योग्य होता है गुरु से जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो रिसीव कर सकता है हाँ। गुरु के सामने जो शिष्य को मूर्ख होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने उदाहरण से इस बात को स्थापित किया है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अपनार हिता हित किछु नाही जानी, कि मैं ये नहीं जानता मेरी भलाई किस चीज में है हाँ, मेरे लिए हित क्या है और मेरे लिए अहित क्या है। ग्राम में व्यवहार है पंडित ताई सत्यमानी, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ तो सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और लोग मुझे विद्वान समझते हैं हाँ। इस प्रकार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं और वो कहते हैं कृपा करे जदि करे आछ उद्धार अपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार, कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए हाँ, क्या कृपा करी है कि मेरा उद्धार करने के लिए आप मेरे कर्तव्य को बताइए कि मुझे मेरा क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जिज्ञासा होनी चाहिए हाँ, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जैसे सनातन गोस्वामी ने कहा है हाँ। और वो आगे कहते हैं के आमी के नियामाय जारे तापत्र यहाँ नाही जानी के मने हित है, कि मैं नहीं जानता कि मेरा हित किस चीज में है और मैं ये जगत में क्यों मुझे तापत्रय या कष्ट क्यों मुझे मिल रहे हैं। तापत्रय कौन से हैं, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के कष्ट हे श्री चैतन्य महाप्रभु मैं क्यों प्राप्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ऐसे दिव्य प्रश्नों को प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने। और यही है भक्तों से हम एसोसिएशन का मतलब भी होता है कि जब हम किसी साधु या गुरु या भक्तों से मिलते हैं तो हम उसे उनसे जिज्ञासा करें। कौन सी जिज्ञासा, इस प्रकार की जिज्ञासा कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं कैसे भगवत भक्ति में और उन्नति कर सकता हूँ। तो उन्नत या उत्तम जिज्ञासा हम करें, बाकी निम्नवत चीज़ों के लिए जिज्ञासा नहीं करें। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के आखिरी चैप्टर में आता है कि जब राजा परीक्षित को शाप मिला था और उनको कहा था कि आपकी मृत्यु होने वाली है 7 दिनों में, तो राजा परीक्षित ने तुरंत सारे ऐश्वर्य को त्याग दिया बिना किसी आसक्ति के और उन्होंने जाकर भक्तों की शरण ग्रहण की और जो शुकदेव गोस्वामी हैं उनकी शरण ग्रहण की और उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे। तो शुकदेव गोस्वामी को जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे वो बहुत ही उन्नत प्रश्न थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जिस प्रकार से इन ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किए थे और उनकी प्रशंसा की थी उन प्रश्नों की सुत गोस्वामी ने, तो उसी प्रकार राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किए थे शुकदेव गोस्वामी के पास और शुकदेव गोस्वामी भी उनकी स्तुति करते हैं और उन प्रश्नों को बताते हैं। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न क्या थे, तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे हाँ, वो क्या थे। परीक्षित महाराज कहते हैं अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषेश्यः यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा, कि मैं हे महान संतों या भक्तों के गुरु शुकदेव गोस्वामी मैं आपसे प्रार्थना करते हुए प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक है उस व्यक्ति का कार्य क्या है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है हाँ, तो ये हमारे लिए है, वैसे देखा जाए हम सबके लिए है। ऐसे नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी या मृत्यु होने से पहले नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा कि आज इन इन भक्त ये भक्त शरीर छोड़ने वाले हैं, तो फिर सारे कांग्रेगेशन को बुलाया जाएगा और सीनियर्स को बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं होगा हाँ, नोटिस बोर्ड में नहीं लगाया जाएगा, मंगल आरती में कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी हाँ, नहीं हाँ। वो कभी भी अचानक हम शरीर छोड़ सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो म्रियमान व्यक्ति है मरने वाला है उस व्यक्ति के लिए क्या कार्य है जो मृत्यु के नज़दीक है। तो कहते कि क्या उसको करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, उसलिए वो पूछते हैं यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृपि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो कहते हैं कि उसको क्या सुनना चाहिए जो मृत्यु के नजदीक है। देखिए कितने अच्छे प्रश्न है परीक्षित महाराज के, उसको क्या सुनना चाहिए और उसको क्या जाप करना चाहिए, हाँ, और उसको क्या कार्य करना चाहिए उस समय, और किस चीज का स्मरण करना चाहिए, और किसकी पूजा करनी चाहिए जो मृत्यु के नजदीक है। तो परीक्षित महाराज इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं, और जब ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे तो शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बोलना शुरू करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि वरियानेश ते प्रश्न, हाँ कि हे राजा परीक्षित, आपके प्रश्न सुनकर मुझे तो बहुत अधिक आनंद हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पूछ सकता। सामान्य व्यक्ति क्या प्रश्न पूछता है, हाँ कैसे आहार किया जाए प्रभुपद, कैसे कैसे निद्रा और कैसे भोग की सुविधा इकट्ठी की जाए, तो सामान्य व्यक्तियों के यही प्रश्न होते हैं। लेकिन राजा परीक्षित के प्रश्नों को जब सुनते हैं तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम रूप, कि हे राजा आपके जो प्रश्न है वो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और क्यों, क्योंकि ये जो प्रश्न है इनका जो उत्तर है वो सुनने के लायक है, सुनने योग्य है, अन्यथा बाकी जो प्रश्न है उनके जो उत्तर है वो सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तरों को सुनेगा जो आपने पूछे हैं, हाँ वो क्या हो जाएगा, हाँ उस भौतिक जगत से पार हो जाएगा, हाँ लोकहितम रूप, कि ये जो प्रश्न है सारे लोगों का मंगल करने वाले हैं या हित करने वाले हैं। हाँ तो इस प्रकार से जो शुकदेव गोस्वामी हैं राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं और यही प्रकट करते हैं कि हमारे भी जो प्रश्न है वो कितने योग्य होने चाहिए, और फिर कहते हैं कि यही चीज सुनने योग्य है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर सुनने योग्य है जो प्रश्न कृष्ण संप्रश्नों, कृष्ण से संबंधित प्रश्न है, वही सुनने के लायक है इस संसार में, अन्यथा तो बाकी सारा कूड़ा करकट है जो सुनने के योग्य नहीं है। हाँ तो परीक्षित महाराज ने जब ये प्रश्न पूछे तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, और वो डांटते भी हैं शुकदेव गोस्वामी, वो कहते हैं श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम। तो कुछ ऐसे ग्रह मेदी होते हैं, ग्रह मेदी का मतलब है एक होता है गृहस्थ, जो स्थित होता है किसमें, ग्रह में, ग्रह में का मतलब जो भगवान घर में जिसने भगवान को सेंटर बनाया है और भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर वो स्थित है उनकी सेवा में, तो वो गृहस्थ है। और दूसरा होता है ग्रह मेधी, तो मेधा का मतलब है बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि केवल घर में लगी हुई है उसको कोई भगवान या भक्त या भगवान की सेवा शास्त्र ये पता नहीं है, जिसकी बुद्धि केवल अपनी पत्नी और बच्चों में लगी हुई है और अपने भौतिक कार्यों में लगी हुई है वो ग्रह मेधी है। तो ऐसा व्यक्ति को शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अंधा है, क्यों, क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हाँ तो ऐसे व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति है उसके पास सुनने के लिए कई विषय होते हैं। हाँ अब देखेंगे संसार में ग्रह मेधियों की संख्या अधिक है, तो उनके पास सुनने के लिए बहुत चीजें हैं, उठते ही बच्चों से सुनेंगे, पत्नी से सुनेंगे, और इतना भी नहीं इसमें भी संतुष्टि नहीं होती, टेलीविजन ऑन करेंगे वहाँ सुनेंगे उसमें भी संतुष्टि नहीं, न्यूज़पेपर खोलेंगे वहाँ भी संतुष्टि नहीं, मैगजीन्स इंटरनेट, तो मतलब हम सुनना चाहते हैं अलग अलग स्थानों में। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन लोगों के पास सुनने के लिए बहुत चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, और ऐसा वो चीज़ों को सुनेंगे तो ये जगत में वो हमेशा बने रहेंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे राजा आपके जो प्रश्न है वो लोगों के हित करने वाले हैं, क्योंकि ये कृष्ण के संग में या संबंधित ये प्रश्न है, क्योंकि कृष्ण के संबंधित चीज़ों को सुनने से क्या होता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, जैसे गंगा है गंगा भगवान के चरणों से निकली है, गंगा भगवान से संबंधित है। बाकी भी जल है जिससे हम स्नान करते हैं, लेकिन उससे इतने पाप नहीं जाते या इतनी शुद्धि नहीं होती। लेकिन गंगा में स्नान करने का कुछ और महिमा है ना? क्यों? क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, भगवान के चरण कमलों से निकली है। तो गंगा जहाँ से बहती है उस भूमि को पवित्र कर देती है, या जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसे वो शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार जो भगवत कथा है, कृष्ण कथा है, वो भी एक तो श्रोता को जो सुन रहे हैं, हाँ जो सोता है या श्रोता है, नहीं हाँ एक होता है श्रोता, हाँ जो श्रोता है उनको शुद्ध कर देती है, और एक है जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है उसको शुद्ध करती है, और जो वक्ता है जो कृष्ण कथा कहता है उसको भी शुद्ध करती है, और बाकी जो लोग सुनते भी है उन सबको शुद्ध करती है। तो इसीलिए ये जो कृष्ण कथा है जो सुनने योग्य चीज है इस संसार में, और परीक्षित महाराज आगे चलकर काफी डांट लगाते हैं कि जो लोग कृष्ण के बारे में नहीं सुनते, हाँ वो कहते हैं कि आयु हरंति वै पुंसा उद्यान अस्तम च यन्नसो, कि जो सूर्य है जो काल है उन लोगों की आयु को हरण करता है जो कृष्ण कथा नहीं सुनते। हाँ क्योंकि सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, तो हमारे जीवन का एक एक दिन खत्म हो रहा है, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हाँ तो लेकिन जो व्यक्ति भगवत कथा सुनने में या भगवान के बारे में चर्चा करने में अपना समय बिताता है तो काल उसके जीवन को नष्ट नहीं करता। हाँ तो ये एक कृष्ण कथा की महिमा है। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं तीसरे अध्याय में कि भले बतोरुक्रम विक्रमानये न शुन्वता कर्ण पुटे नरस्य, कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा को विक्रमान, कृष्ण के कार्यकलाप क्या है, शक्तिशाली है, उनके कार्यों के कार्य जो है बहुत महान है, ऐसे कृष्ण के कार्यकलापों को या कृष्ण से संबंधित चीजों को जो व्यक्ति सुनता नहीं है तो उसके जो कर्णपुटे हैं, कर्णपुटे नरस्य मतलब उस व्यक्ति के जो कान हैं वो क्या है, बले बतोर उत्क्रमान, कि वो बले बिले बतो कि सांप के बिल के समान है, कि सांप जैसे बिल में रहता है तो उसी प्रकार ये कान के छेद हैं जिनका कोई यूज नहीं है। हाँ तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा को सुनते नहीं है वो व्यक्ति क्या है, हाँ पशु के समान, हाँ उनका वर्णन करते हैं। और इसीलिए और जो व्यक्ति सुनते हैं उनके लिए क्या है, परीक्षित महाराज कहते हैं ना अति दीर्घेन, ना अति दीर्घेन, ज्यादा समय नहीं लगता, परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान विशते हृदय, कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा को सुनता है कृष्ण उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। कैसे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कान के छेद से कृष्ण जाते हैं और हृदय में निवास करते हैं, और वो भक्त भगवान को बांध लेता है अपने हृदय में। तो कृष्ण बहुत तीव्रता से कृष्ण कथा जो सुनते हैं या कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं उनसे कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, और भगवान को प्राप्त करना उस भक्त के लिए बहुत सरल हो जाता है। और यही चीज केवल हमें सुप्रसिद्धति दे सकती है। प्रभुपाद कहते कि पूर्णतया ये जगत में हम संतुष्टि चाहते हैं, हाँ तो क्या है, केवल कृष्ण का चरण आश्रय ही एकमात्र हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है। तो ये संसार में भगवान के अलावा, भगवान की कथा के अलावा, भगवान के कीर्तन के अलावा या भगवत सेवा के अलावा हाँ कोई सुख पाने की हमारी अभिलाषा है तो वो अभिलाषा तुच्छ है या गलत है वो इच्छा, क्योंकि ये जगत का जो प्लेजर है वो हम कभी भी ये जगत में जो आनंद है, भौतिक चीज़ों में जो आनंद हमें प्राप्त करने की इच्छा है उससे कभी भी हम पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रीचर है, जो प्रचारक है या जो भक्त है उसको फुल्ली कन्विंस होना चाहिए, डे बाय डे उसको डे बाय डे कन्विंस होना चाहिए कि इस भौतिक जगत में एक एंजॉयमेंट नहीं है, तो हमें कृष्ण कथा में आनंद नहीं लेते हैं, तो हम इस संसार में आनंद या संतुष्टि ढूंढते हैं, सोचते हैं मुझे ये चीज़ संतुष्ट करेगी, मुझे वो चीज़ संतुष्टि देगी, हाँ मुझे नहीं नहीं, नहीं ये चीज़ मुझे संतुष्टि देगी, हाँ। तो लेकिन ये देखा गया है कि ये जगत की जो चीज़ें हैं वो अब हमें कभी भी फुल्ली जो सेटिस्फैक्शन है या पूर्णतया संतुष्टि है वो प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने ये जगत में वो चीज़ प्रदान ही नहीं की है, हाँ। वो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है या जो कोई भी विषय है, वस्तु है, वो भगवान ने रखी नहीं है, वो सारी क्या है, अपूर्ण है, अब वो पूर्ण नहीं है। कृष्ण ही केवल एकमात्र पूर्ण है। तो इस वर्ल्ड में ऐसे लोगों का वंश है, वंश को क्या कहते हैं, गुच्छा है, ऐसे जीवों का गुच्छा जो कृष्ण से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं, हाँ। जैसे हम फूलों का गुच्छा बनाते हैं और या तो किसी कोने में फेंक देते हैं या फिर भगवान को ऑफर करते हैं, तो ये वैसे ही है। कुछ जीवों का गुच्छा है वो भगवान के चरणों कमलों में है, और कुछ जीवों का गुच्छा बना लिया और उसको जो कृष्ण से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया है। और उनका मोटो क्या है, भागवतम कहता है, एट ड्रिंक और बी क्या कहें, बी मैरिया, कि खाओ और पियो और शादी करो, ये जीवन का लक्ष्य, ये उनका मोटो है, भौतिकवादियों का ये टारगेट है। कहते कि यही चीज़ें हाँ मुझे आनंद देगी इस संसार में। लेकिन इनके भी आचार्य हैं, कौन है इनके आचार्य, चार्वाक, हाँ। तो चार्वाक मुनि इन भौतिकवादियों के आचार्य हैं, उनके भी अपनी शिक्षाएं हैं। तो चार्वाक मुनि कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि ये संसार में ही आनंद है, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि आप इस संसार में आनंद प्राप्त करो, कैसे, घृतम पिबेत, घी के साथ सारी चीजें, घी को पियो या घी से बनी हुई चीजों का आस्वादन लो, चाहे आपको कर्जा भी लेना पड़े, हाँ, लेकिन आपको ये करना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत, कि ये शरीर क्या है, भस्मी भूत हो जाने वाला है, खत्म होने वाला है, तो क्यों चिंता करते हो, अगला कोई जीवन नहीं है, हाँ, ये भस्मी भूत हो जाएगा तो फिर आगे किसी का कर्जा भी देना नहीं पड़ेगा, हाँ, कोई चिंता नहीं है, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जब तक ये जीवन है उसको एंजॉय करो। तो आप ये चार वाक शब्द से देखेंगे तो चार और वाक मीन्स क्या, चार, चार मीन्स चार लेग, चार चार पाव किसको होते हैं, पशु को होते हैं, और वाक मीन्स वॉक करता है, चलता है, तो पशु चार पावों पर चलता है। तो चार वाक की जो सभ्यता है ये किसके लिए है, पशुओं के लिए है। तो जो व्यक्ति चार्वाक के सिद्धांत का अनुकरण करता है या अनुसरण करता है, चार्वाक के सिद्धांत को फॉलो करता है और ये सोचता है कि ये जगत ही मेरे उपभोग के लिए है, तो वो व्यक्ति पशु है, हाँ, हाँ, पशु से उसकी तुलना की गई है। तो आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे इस भौतिक जगत के प्लेजर के बारे में कुछ समय के लिए, और मटेरियल प्लेजर का नेचर क्या है, हाँ, उसको हम जानेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमें जानकर ये अनुभूति हमें होगी कि वास्तव में ये जगत मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, हाँ। तो मटेरियल प्लेजर के पांच नेचर है, नेचर को क्या कहते हैं, स्वभाव, प्रकृति, हाँ। तो एक है कि ये जो भौतिक सुख है, भौतिक जो सुख है जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, हाँ, वो ये जगत में वास्तव में नहीं है, लेकिन हमें इसका आभास होता है ये जगत में। तो इसका पहला स्वभाव क्या है, इसका पहला स्वभाव है कि जो भौतिक सुख है वो ट्विन्स है, ट्विन्स को क्या कहेंगे, जुड़वे हैं। तो कभी भी हम सोचते हैं कि भौतिक सुख मुझे प्राप्त करना है, तो आप देखेंगे कि उसके साथ साथ हमेशा क्या है, दुख है। इस संसार में कोई भी चीज नहीं है कि जो जो जिसमें केवल सुख है, असंभव है कोई भी चीज। चाहे हम जैसे पुरुष है उसको लगता है स्त्री में सुख है, हाँ, या स्त्री है उसको लगता है कि पुरुष में सुख है, या फिर हमें लगता है कि हमारे संबंधियों के पास सुख है, या पुत्र में सुख है, या फिर धन में सुख है, या फिर किसी पद में सुख है। तो लेकिन जैसे ही वो चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो साथ साथ अपने साथ क्या ले आती है, इतना बड़ा दुख ले आती है। तो इस संसार में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम एंजॉय करना चाहते हैं, वो हमें संतुष्टि नहीं देते। जितने में अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास जो हमें संतुष्टि नहीं दे सकते या आनंद नहीं दे सकते। जैसे कि आप समंदर में जा रहे हो, जहाज में हो, और आपको बहुत प्यास लगती है, लेकिन पानी तो बहुत है, हाँ, लेकिन आप वो पानी पियोगे तो आप जीवित रहोगे, नहीं रह सकते। हाँ, तो पानी चाहिए हमें, पानी तो बहुत है, हाँ, लेकिन वो पियेंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, हाँ, तो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते उस साल्टी या नमकीन पानी को पीकर। तो उसी प्रकार से ये जगत में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं सुख के लिए, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है जो मुझे संतुष्टि प्रदान कर सकती है, लेकिन वो हमें संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती, बल्कि ज़्यादा हमें दुख देती है। मतलब ये जगत का जो सुख है उसमें मिक्सचर है, किस चीज़ का, दुख का। जैसे स्वीट राइस है, स्वीट राइस अपने आप में बड़ा स्वीट है ना, अच्छा है, लेकिन स्वीट राइस में आप सैंड मिक्स कर देते हो तो वो खाने के लिए आनंददायक है क्या, हाँ नहीं है। वो स्वीट राइस हमें कष्ट ही देगा, यदि उसमें सैंड है या मिट्टी है वो हम खाते हैं तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होगी और उससे कई सारे कष्ट होंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जो पेन है, जो दुख है, वो अतिथि है। कौन है, अतिथि, मतलब उसको हम इनवाइट नहीं करते हैं इस जगत में, अतिथि को, ये पेन जो अतिथि है उसको हम इनवाइट नहीं करते, और वो स्वयं ही आ जाता है, कभी भी आता है वो, और कभी भी क्या, हर समय आता है। तो ये जो अतिथि है मिस्टर मिस्टर पेन जिसको कहा गया है, मिस्टर पेन को अतिथि के रूप में कोई भी नहीं चाहता, हम सब नहीं चाहते, हम हमेशा दूर रहना चाहते हैं। तो जैसे हम इंजॉयमेंट के लिए प्रयास करते हैं वैसे ही हमें क्या होता है, तुरंत कष्ट मिलता है। जैसे हम स्मोकिंग करना चाहते हैं तुरंत हमें, उससे कौन सी बीमारियां होती हैं स्मोकिंग करते तो, कैंसर। तो ऐसी हर एक चीज हम एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं इस संसार में, तो उसमें निश्चित रूप से उसके साथ साथ कष्ट है। क्योंकि भौतिक जगत का जो सुख है वो दुख से, दुख के साथ उसने जन्म लिया है, वो दोनों ट्विन्स हैं, वो अलग नहीं हो सकते, एक साथ ही रहते हैं। जैसे कहते कि जो कॉइन है उसको हेड एंड टेल होता है ना, दोनों साइड होते हैं, तो उसी प्रकार ये जगत का सुख हमें लगता है, तो लेकिन उसके साथ साथ दुख भी है। जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पहले टेलीविजन आते थे जिनमें एंटेना अलग होता था, आज का पता नहीं मुझे अलग है कि इनबिल्ट है, इनबिल्ट होती है ना कई चीज़ें। कुछ प्लेयर्स आते हैं MP3 जिनमें इनबिल्ट माइक होता है, हाँ। तो ये जगत में क्या है, ये जगत ही है बिल्ट इन पेन, इनबिल्ट पेन है इसमें, सफरिंग्स है इसमें बनाई गई है। तो ये एक स्वभाव है इस भौतिक सुख का, कि भौतिक सुख जितना भी हम ट्राई करेंगे उसके साथ साथ हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, दुख स्वीकार करने के लिए। तो जैसे ही इंजॉय करना चाहेंगे इस भौतिक जगत को, वैसे ही हमें जगत में दुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार होना होगा। तो इस दूसरा नेचर क्या है इस भौतिक प्लेजर का, वो है मटेरियल प्लेजर इज लिमिटेड बट लीड्स टू अनलिमिटेड सफरिंग, कि ये भौतिक सुख लिमिटेड है लेकिन ये क्या करता है, अनलिमिटेड सफरिंग्स हमें देता है, ये भूल जाते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा आनंद के लिए, इसलिए गोविंद कविराज कहते हैं ए धन यवन पुत्र परिजन एने छे आशिक परतीति रे चपल सुख लव लागिरे। हाँ, ये क्या है, चपल सुख है। मैं भी हम सोचते हैं ये चीज मुझे थोड़ा सा आनंद देगी, संतुष्टि देगी, तो लेकिन लिमिटेड प्लेजर दे देगी आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको तैयार होना होगा अनलिमिटेड सफरिंग्स को स्वीकार करने के लिए, अनंत दुखों को झेलने के लिए हमें बिल्कुल फोल्डेड हैंड होना होगा यदि हम चाहते हैं। तो कोई कहता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग, हाउ मच कितना आप एंजॉय करोगे और कितने लंबे समय तक एंजॉय करोगे, कितना एंजॉय करेगा कोई व्यक्ति। जैसे कि कई ऐसे धनवान लोग होते हैं जिनके पास सारी चीज़ें हैं और जब वो भोजन के लिए बैठते हैं, जैसे हमारे एक डिवोटी बता रहे थे मुझे कि वो एक बहुत बड़े एक धनवान व्यक्ति के घर में गए हैं उनको प्रचार करने के लिए या डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। तो वो चार लोग थे फैमिली मेंबर्स, तो वो अंदर रूम में बैठे हुए थे जब गए, तो अंदर वो ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे और ये दो जो ब्रह्मचारी जो बाहर बैठे थे, और बीच में शीशा भी था जिससे दिखता था कि अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने छोटे छोटे बाउल्स होते क्या कहते हैं उनको, बर्तन, कटोरिया, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे और छोटे से पांच छह कटोरिया रखी थी जिसमें छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं उनको काट के रखा था, और एक ही मग या बड़ा सा ग्लास भर के जूस था। तो बैठे हैं और वो उसको ले रहे हैं साथ साथ। तो ये दो डिवोटीज बाहर थे और वो सोच रहे थे कि, और वो लोग खा रहे साथ साथ और चारों लोग, बल्कि वो इतना कम फ्रूट्स था, तो वो ब्रह्मचारी कहते हैं कि ये चारों लोग जो खा रहे हैं वो केवल हमारे एक भक्त को दिया जाता तो वो इजीली ख़त्म हो जाता सरलता से, बल्कि वो इतना आनंद नहीं उठा पाते। प्रभुपाद इस चीज़ के लिए कहते थे कि आप 5,000 रुपये कमाते हो तो लेकिन आप 5 रोटी खाते हो, तो लेकिन कोई 50,000 कमा रहा है वो भी कितना खाता है, तो कितना आप इस संसार में आनंद उठाओगे और कब तक। तो ये अनलिमिटेड सफरिंग क्यों है, क्योंकि डिजायर टू एंजॉय इज अनलिमिटेड, क्योंकि हमारी इच्छा है एंजॉय करने की, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट हम चाहते हैं, तो इसलिए। लेकिन इस संसार में अनलिमिटेड एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, इस संसार में क्या मिलेगा, अनलिमिटेड सफरिंग्स ही हमें मिलेगी। तो क्योंकि लंबे समय तक हम नहीं भोग कर सकते, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा, पहले ही अनुभव करना चाहिए कि मेरा शरीर कितने दिनों के लिए है, जिस सुख के लिए मैं उन्मत्त हूँ या मैड हूँ, क्योंकि ये बॉडी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। क्योंकि जैसे भी बॉडी, क्योंकि एंजॉयमेंट की भावना भौतिक जगत को वो हर समय बनी रहती है। प्रभुपाद कहते थे कि विदेशों में कुछ ऐसे ओल्ड व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति, जो नाइट क्लब्स में जाते हैं वहाँ आनंद प्राप्त करने के लिए, बल्कि वो शरीर उनका बिल्कुल ही निष्क्रिय हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जाना चाहते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम, कि अंगम गलितम मतलब बॉडी जब बुढ़ापा आता है तो गल जाता है ये शरीर, शक्तिहीन हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, कि ये जो सर है सारे बाल निकल जाते हैं जब हम ओल्ड हो जाते हैं, अपने आप शेविंग नहीं करनी पड़ती, हमारे भक्तों को हेयर शेव करना पड़ता है, लेकिन ओल्ड हो जाते हैं तो अपने आप हेयर शेव हो जाता है। गलितम दंता विहीन जातम तुंडम के दांत से विहीन हो जाता है हमारा मुंह, क्या होता है दांत नहीं रहते, सब खत्म हो जाते हैं। और वो कहते हैं वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम तथापि न मुंचति आशाम पिंडम, बूढ़ा हो जाता है और डंडे को स्वीकार कर लेता है लेकिन फिर भी हृदय में जो इस संसार से आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा है वो नहीं जाती। हाँ, क्योंकि ये गलत उसकी प्रोसेस थी ये जीवन में आनंद प्राप्त करने की। भौतिक चीज़ों में हम आनंद ढूंढ रहे थे, हमारे फैमिली मेंबर्स में, देश की सेवा में, उसकी सेवा में हम आनंद प्राप्त करते और बूढ़े हो जाते हैं तभी तक भी हमें आनंद नहीं मिलता, फिर भी हमारी चाह होती है, इच्छा बनी रहती है इस संसार में आनंद प्राप्त करने की। क्योंकि इस संसार में आनंद कितना है, एक ड्रॉप के समान है, इतना थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा आनंद है। लेकिन हम जीवात्मा है, भगवान के अंश है और हम एंजॉय करना चाहते हैं सागर के समान, तो हमें नहीं वो संभव हो सकता। हाँ, सागर के जो एक सागर की तुलना आप एक ड्रॉप से नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जगत का जो आनंद है वो इतना छोटा है कि जिससे हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे कि एक बहुत वंडरफुल स्टोरी आती है कि कैसे ये जगत का जो आनंद है वो हमें तुष्ट नहीं करेगा। कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था तो अचानक वो व्यक्ति डेजर्ट में आ गया, डेजर्ट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में पहुंच गया। तो रेगिस्तान में जो दौड़ रहा था, जा रहा था, और वो उसको पानी मिल ही नहीं रहा था और वो मरने ही वाला था, बहुत कष्ट प्राप्त कर रहा था। वो अचानक चला भी नहीं जा रहा था तो गिर जाता है, गिर के फिर उठता है, उठ के अपने घुटनों के बल पर वो बैठता है। और उसको लग ही रहा था कि अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हो और फिर से गिर के बिल्कुल मृत व्यक्ति के समान गिर जाता है वहाँ मिट्टी में और बिना पानी के वो चिल्ला भी नहीं सकता। तो अचानक उसको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। हाँ, तो वो आवाज थी एक हेलीकॉप्टर की आवाज थी, वहाँ डेजर्ट में हेलीकॉप्टर। तो इसको लगा, वैसे जैसे आवाज सुनी और देखा दूर से कि हाँ, उसको लगा कि अभी मुझे बचाने के लिए कोई चीज आई है। तो जैसे हेलीकॉप्टर को दूर से देखा तो इसको कुछ लगा, थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ कि हाँ, अभी मेरी बचने की संभावना है। तो वो जो हेलीकॉप्टर है वो धीरे 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 इसने देखा कि ये मेरे ओर ही आ रहा है। और वो वाइट कलर का हेलीकॉप्टर था और उसके ऊपर नीले अक्षरों में लिखा था, क्या लिखा था, WATER, वाटर लिखा था। तो इसकी नज़र उस नाम के ऊपर गई जो हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा था वाटर शब्द। तो ये बहुत अधिक खुश हो जाता है, उसकी आंखें बड़े होने लगती हैं, जैसे जगन्नाथ जी की आंखें है कि नहीं, बड़ी आंखें। हाँ, जगन्नाथ जी की आंखें, तो ऐसे बड़े आंखों से वो देखता है और धीरे धीरे उसका उत्साह बढ़ता है, फिर उसको एनर्जी महसूस होती है और खड़ा होने का प्रयास करता है, खड़ा हो जाता है। तो वो जो हेलीकॉप्टर नज़दीकी लैंड करता है और वो सोचता है कि ये मेरे लिए आया है। हाँ, और ये इतना प्यासा था। हाँ, तो जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है उसके सामने ही, तो उस हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति उतरता है नीचे। हाँ, और उतर कर क्या करता है, एक चम्मच अपने चम्मच अपने हाथ में ले आता है, एक स्पून। हाँ, और उसमें भी कितना पानी था, पूरा चम्मच भी नहीं भरा हुआ था एक ड्रॉप वाटर था। और वो आता है और इस व्यक्ति के मुंह में क्या करता है, वो डाल देता है। और फिर से वो व्यक्ति पीछे जाता है हेलीकॉप्टर में बैठता है और हेलीकॉप्टर लेके वापस चला जाता है। तो ये व्यक्ति बल्कि और अधिक कष्ट प्राप्त करता है। हाँ, पहले तो कष्ट में था ही, लेकिन और अधिक वो कष्ट उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी आया लेकिन कितना, एक ड्रॉप। हाँ तो वैसे ही ये जगत का सुख है, इतना सूक्ष्म, हम इतनी अभिलाषा करते हैं, हाँ जैसे अभिलाषा करते हैं, हाँ कि जैसे माता पिता अभिलाषा करते हैं बच्चा छोटा होता, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ऑफिसर हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, ये होगा वो होगा, हाँ तो एक्सपेक्टेशन, क्या कहते एक्सपेक्टेशन, सही शब्द है, आशाएं। तो इस संसार में प्रभुपाद कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन है, जो एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है दूसरों से कि ये चीज मुझे देगी सुख, हाँ तो सबसे ज्यादा मिजरेबल व्यक्ति वो है। तो फिर उसे फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत अधिक, हाँ और फिर हाँ वो इस संसार में अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त करता है। जैसे कि हम 11वें स्कंद में पढ़ते हैं हाँ कि कैसे एक पिंगला वेश्या थी, हाँ जो पिंगला वेश्या का वर्णन आता है कि ये जो वेश्या थी अब वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर वेट करती थी, कैसे कोई पुरुष आएगा और मुझे धन देगा, हाँ और मुझे इंद्रिय तृप्ति का आनंद प्रदान करेगा। तो लेकिन वो हर बार घर के बाहर जाती थी, वेट करती थी और फिर अंदर आती थी। तो पूरा दिन चला गया, रात चली गई, लेकिन हाँ कोई भी व्यक्ति आता नहीं है उसके पास और ना उसको धन देता है। तो अंतिम समय में अब उसको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, हाँ और वो दुखी हो जाती है और विरक्ति आती है उसके हृदय में कि कहती है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, हाँ कि मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूँ कि इस जगत में ये जो तुच्छ व्यक्ति है वो मुझे क्या सुख देगा जिसकी मैं आशा कर रही हूँ, वो मुझे क्या सुख देगा, उसका जो शरीर है वो चमड़ी बाल नाखून मल मूत्र इससे बना हुआ है और मैं ऐसे व्यक्ति से सुख की आशा कर रही हूँ, हाँ ऐसे शरीर से आसक्त होने जा रही हूँ, हाँ लेकिन मैं भूल गई हूँ कि जो सारे जीवों के जो प्रिय है वो कृष्ण, जो पूर्णतया शरणागत व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी सेवा या उनकी शरण मैंने लेना छोड़कर किसी और चीज से संतुष्टि की आशा की है। तो पिंगला वेश्या फिर ये रियलाइज करके कि मुझे इस संसार में ना कोई पुरुष सुख प्रदान कर सकता है, मुझे केवल सुख प्रदान कर सकता है तो वो कौन है, भगवान कृष्ण है, वही एकमात्र मुझे इस संसार में सुख प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए जो भक्त है वो जानता है कि इस संसार में पूर्णतया संतुष्टि मुझे कोई चीज दे सकती है तो वो है कृष्ण के चरण कमल या जो भगवान है वही मुझे पूर्णतया संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये जगत में हम सुख प्राप्त भी करना चाहते हैं तो लेकिन हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, हाँ लेकिन जो स्पिरिचुअल आनंद है उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि भौतिक सुख के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। और भौतिक सुख क्या है, हर समय हमें थप्पड़ मिलती है, हर समय हमें थप्पड़ खानी पड़ती है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक सरोवर में एक बगुला था, हाँ वो जाता है बहुत समय तक वहाँ वेट करता है किस चीज़ के लिए, मछली खाने के लिए। तो बहुत समय देखा कि मछली नहीं मिल रही है, हाँ उसको, तो उसी समय एक बैल आता है और वो बैल पानी पीता है और निकलता है वापस। तो बैल जब वापस जा रहा था तो बगुले ने बैल को देखा तो बैल के जो अंडकोश हैं वो लटक रहे थे पीछे। तो बगुले को लगा कि वंडरफुल, हाँ ये मछलियाँ लटक रही हैं, हाँ हाँ तो उसको लगा कि ये मछलियाँ हैं, दो मछलियाँ लटक रही हैं या जो अंडकोश को मछलियाँ समझ रहे थे बैल के। तो ये जो बगुला है उस बैल के पीछे पीछे चलने लगा। आपने गाँव में देखा होगा कभी इस चीज़ को, आप देख सकते हैं, हाँ। तो जब इस बगुले ने सोचा कि ये तो बहुत सुंदर मछलियां हैं मैं प्राप्त करूंगा, तो बगुले ने अपना जो चोंच क्या वो डाली, हाँ उसको लगा ये दो अंडकोश मछलियां हैं बैल के पीछे लटक रही थी। तो जैसे ही अपने चोंच डाली और उनको पकड़ने का प्रयास किया तो बैल ने क्या किया, एक जोरदार लात मार दी। हाँ, वैसे बगुला कई मीटर दूरी पर गिर गया, मूर्छित हो गया। फिर आग खुलता है, फिर कहते अरे कहाँ गई मछलियाँ। फिर उसे मछलियाँ दिखाई देती है और फिर उतने ही उत्साह से दौड़ता है और फिर प्रयास करता है, फिर बैल क्या करता है, लात लगाता है। तो इतना कठिन है इस संसार में यह वर्क हार्ड, हाँ, भौतिक सुख के लिए, बल्कि लेकिन सुख हमें एक मिलता ही नहीं है। प्रभुपाद चैतन्य शिक्षामृत के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि जैसे कोई गधा है, हाँ, वो इंद्रिय सुख के लिए फीमेल जो गधा है उसके पीछे भागता है, तो वो जोरदार लाथे मारती है और उसको सहन करता है। तो इस प्रकार से शास्त्र समझाते हैं कि कितना कठिन है, हाँ, आपको भौतिक सुख प्राप्त करना, हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए कि ये जो भौतिक सुख का स्वभाव क्या है कि मटेरियल प्लेजर इज लिमिटेड बट लीड्स टू अनलिमिटेड सफरिंग, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है वो चीज़ से, बल्कि हम सोचते नहीं ये चीज़ मुझे सुख देगी, दुख नहीं देगी, लेकिन हम जानबूझकर हमारे जीवन में उस कष्ट जो अतिथि है उसको इन्वाइट करते कि आओ और मुझे तंग करो। प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक सुख प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन आप देखो प्रभुपाद कहते आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना बहुत इजी है, बस आपके पास ये चीज होनी चाहिए, दो हाथ होने चाहिए और एक मुंह होना चाहिए, केवल आपने ताली बजाओ और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, तब एक्सटेसी में आ जाओगे। बस आध्यात्मिक सुख इतना इजी है प्राप्त करना। तो जो तीसरा नेचर है मटेरियल प्लेजर का, कि जो भौतिक सुख है वो दिखता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब अनुभव नहीं किया जा सकता। भौतिक सुख सुख दिखता है, सोचो मुझे बड़ी बड़ी मॉल्स दिखते हैं, हाँ, इतना अट्रैक्ट करते हैं हमारे मन को, हृदय को, इंद्रियों को, हाँ, और बड़ी बड़ी कारें दिखती है, हाँ, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष दिखते हैं, हाँ, तो लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाते हम उस सुख को, हाँ, लेकिन दिखता बहुत सुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख का क्या है, आध्यात्मिक जो आनंद है वो दिखता नहीं है लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हैं। भौतिक जो आनंद है वो दिखता है लेकिन उसको आप अनुभव नहीं कर सकते, हाँ, तो जैसे कि आध्यात्मिक आनंद हमें दिख नहीं रहा है, हाँ, अभी कहाँ है आनंद, तो लेकिन हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, जस्ट कृष्ण के बारे में सुनने से, पढ़ने से, चांटिंग करने से, प्रसाद पाने से, हाँ, धाम में जाने से, तो हमें महसूस होता है। लेकिन भौतिक सुख का इसके विपरीत है। और जो चौथा जो नेचर है जो मटेरियल सुख का, वो है ये नया नहीं है, नॉट न्यू, ये जो भौतिक सुख जो हम सोच रहे हैं वो नया नहीं है, वो क्या है, पुराना ही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चरवित चरवनानाम, कि ये तो वही सुख है जो हमें, जो हमने पहले अलग अलग शरीरों में हमने प्राप्त किया था, कुत्ते बिल्ली सुअर कौवे के शरीर में हम थे और वहाँ भी यही करते थे, तो अभी कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नया सुख तो हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, सेम कार्य हम कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो शुगर केन है मशीन में डाल दो और उसको मशीन में डाल के जूस निकालो और उसका वो बचता है, उसे क्या कहते हैं, जो भी जूस निकलने के बाद जो बचता है जो भी है, तो आप समझ गए कहने का तात्पर्य, हाँ, तो उसको आप फेंक देते हैं और फिर जो पिग आता है और उसको चूसता है और वो ट्राई करता है उसे जूस निकालने का, तो लेकिन जो सुअर है उसको जूस नहीं निकलता। तो उसी प्रकार हम कितना भी ट्राई करें हाँ ये कठिन है। तो प्रभुपाद आपने एक तात्पर्य में कहते हैं फर्स्ट कैंटो के फिफ्थ चैप्टर में, प्रभुपाद कहते हैं ओल्ड क्रोज एंड न्यू क्रोज। हाँ क्रो का मतलब है कौवा, नया कौवा और पुराना कौवा। तो मनुष्य यूज करते हैं चीजें और वो फेंक देते हैं डस्टबिन में, है ना, कितना कूड़ा कचरा पड़ा होता है ना, गंदा, इतनी सारी चीजें। तो जो कौवे हैं, पुराने कौवे आते हैं, बड़े बड़े कौवे, और उसमें वो खा लेते हैं जो जो चीज़ें हैं। हाँ कौवों का जो मन है उनमें होता है, तो वो खाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। बल्कि जो सबसे और निकृष्ट चीज़ जो बचती है, फिर दूसरे कौवे आते हैं और वो उसको खाते हैं। तो प्रभुपाद तुलना करते हैं इंडियंस न्यू क्रोज, हाँ, और जो अमेरिकन्स है वो क्या है, ओल्ड क्रोज है। तो जो अमेरिकन्स है, जैसे एक टीवी सीरियल आया था सांता बारबरा या समथिंग ऐसा पुराना, कई साल पहले, तो बहुत फेमस था। तो लोग, बल्कि वो सीरियल अमेरिका में बना था, वहाँ बिल्कुल फ्लॉप था। और उन्होंने क्या किया कि सोचा कि उसको इंडिया में भेज देते हैं, हाँ, क्योंकि जो चीज़ ये हो जाती है वो चूस लेते हैं, जूस निकालते हैं गन्ने का, और वो भारत में भेज देते हैं, क्योंकि न्यू क्रोज है यहाँ, नए कौवे हैं, वो और ट्राई करते हैं जूस निकालने को। तो जो वो मूवी था टीवी सीरियल, उन्होंने कई खर्चा करके बनाया, वहाँ फ्लॉप रहा, तो उन्होंने भारत में भेजा। और मैंने पर्सनली कई लोगों को देखा है कि जैसे हम तैयारी करते हैं कि अभी ये फेस्टिवल आने वाला है, या गोवर्धन अभी आ रहा है ना, गोवर्धन अपीयरेंस डे आ रहा है, गोवर्धन पूजा आ रहा है, कुछ कुछ, तो हम जैसे भक्त उत्साही रहते हैं, मैं भी ऑफिस नहीं जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसी प्रकार से वो टीवी सीरियल को देखने के लिए लोग मैड हो गए थे भारत में, हाँ। तो ये न्यू क्रोज है, हाँ। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, सोचा कि ये जो कौवे हैं, हाँ, इनको मुझे कृष्ण भावना देनी है, तो पहले अमेरिका में जाके देना होगा, और वो स्वीकार करेंगे तो फिर ये लोग, हाँ, बहुत सरलता से ये चीज़ को स्वीकार कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए, ये जो भौतिक जगत की जो रचना कृष्ण ने की है वो परफेक्ट है। कृष्ण ने नेचुरली जो भी चीज़ें हमें दी है सुख और शांति के लिए, वो इनफ है। हम अननेचुरल वे से जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं सुख और ये चीज़ के लिए, संतुष्टि के लिए, तो वो हमें कष्ट प्रदान करती है। और अब देखो, जो भी व्यक्ति ने नई कुछ चीज़ बनाने का प्रयास किया है, हाँ, उससे कष्ट ही कष्ट आए हैं, हाँ। नई चीज़ कोई भी प्रकट करने का प्रयास किया है, जो मनुष्यों ने, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, कारें आ रही है, मोबाइल्स आ रहे हैं, कितनी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली वो क्या है, वो कुछ ना कुछ साथ साथ में कष्ट ही ला रहे हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम नहीं बना रहे हैं वो भी पंच महाभूतों से हैं। तो पांचवा जो जो नेचर है इस सुख का, वो क्या है कि ये जो सुख है वो कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए वो रिमेन नहीं करता, कि ज़्यादा समय के लिए ये जो सुख है वो नहीं रहता, कुछ दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका में, प्रभुपाद कहते हैं भोग त्याग साइकिल, भोग त्याग। भोग त्याग क्या है कि जो शहरों के लोग हैं वो ट्रैफिक से, पोल्यूशन से, टेंशन से परेशान होते हैं, और उनकी इच्छा होती है ना गांव में जाना चाहिए, जहाँ बड़ा कोई आवाज़ नहीं, शांत है, हवा है, पानी है, हाँ, नैसर्गिक। तो वो इसको त्यागते हैं और वहाँ जाते हैं। तो गांव में जाके एक दो दिन अच्छा लगता है उनको, लेकिन फिर उनको वहाँ भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो शहर में आ जाते हैं वापस, हाँ। तो ये जगत, ये स्वभाव है इस जगत का, ये आप किसी भी प्रकार से ट्राई करो। जैसे कड़वी चीज़ क्या होती है, करेला, उससे ज़्यादा कड़वा नीम, नीम को कैसे भी खाओ आप, वो आपको क्या देगा, कड़वाहट ही देगा। तो इस वर्ल्ड में कैसे भी आप प्रयास करो, ये हमें मटेरियल लाइफ में कष्ट ही देगा। और हम अब देखेंगे कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि गुलाब जामुन हम खाते हैं, जैसे देखते हैं तो और स्ट्रांगली डिज़ायर होती है, एक खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, तो जो आनंद है वो कम हो जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से टेलीविज़न है, दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब दूर का दर्शन है ना, तो ये नाम दिया गया था, दूर का दर्शन आपको नज़दीक हो जाए। और आजकल हम किसी के घर में गए थे तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, आजकल तो मैंने किसी से पूछा था कि कितने चैनल्स आए हैं, 200 समथिंग ऐसे इतने चैनल्स हैं। तो हम गए और एक जगह बैठे थे, तो वो जो बच्चा है छोटा सा, वो रिमोट टेलीविज़न का हाथ में लेकर जस्ट दबाते जा रहा था और चैनल्स को चेंज करते जा रहा था। तो वैसे ही है कि हम हर समय चेंज चाहते हैं, हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ वो हमें लंबे समय तक आनंद नहीं देती, हर समय हम चेंज चाहते हैं इस जगत में। तो इसलिए जो भक्त है उनको इस भौतिक जगत का ये जो सुख है उसको एनालाइज करना चाहिए, शास्त्रों के दृष्टिया देखना चाहिए, और फिर उसको जो स्पिरिचुअल आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। आध्यात्मिक आनंद क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आनंदामृति आनंद का ये सागर है, और ये सागर क्या होता है, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, कि हर पद पद में ये बढ़ता जाता है, लेकिन भौतिक चीज़ों से जो आनंद है वो कम हो जाता है। वो चीज़ से किसी भी चीज़ से जो हम प्राप्त करते हैं कुछ समय के लिए हमारे पास होती है तो वो कम हो जाती है। बड़ा आग्रह मैदियों के लिए एक बात, एक मैंने एक डिवोटी से पूछा, गृहस्थ डिवोटी है, कि प्रभु जी आपका रियलाइजेशन क्या है आपके गृहस्थ जीवन में, तो ये थोड़ा सा कष्टप्रद है लेकिन मैं सोच रहा था शेयर करूँ। तो वो कहते हैं, मतलब इससे ही है ये बात, कि जो सुख है वो रिमेनिंग नहीं है, वो थोड़े ज़्यादा ये करते हैं चीज़ को ना, एनालाइज करते हैं हंसी के तौर पर। तो उनका नया ही मैरिज हुआ था, तो अब एक दो साल हुए थे शायद, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा जो टॉलरेंस है वो और अधिक बढ़ गया है, टॉलरेंस की जो शक्ति है वो और अधिक बढ़ गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस जो सुख हम सोच रहे हैं भौतिक चीज़ों में, तो वो लंबे समय के लिए हमारे पास नहीं है। तो इसलिए जो भक्त होता है या जो प्रीचर है वो डे बाय डे प्रैक्टिस करते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, ये वो कन्विंस अपने आप को करता है दिनों डे बाय डे कि ये जो जगत है इसमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। असली सुख क्या है, भगवान के चरण कमलों में ही वास्तव में असली सुख है, और उसी की प्राप्ति के लिए वो तत्पर होता है या चाहता है, उसकी आकांक्षा करता है। तो आज के श्लोक में भी इसी बात को जोर देते हैं सूत गोस्वामी, और अप्रिशिएट करते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए जिससे सबका हित हो सके। तो सबका हित किस में है, कृष्ण की संबंधित चर्चाओं में, कृष्ण की संबंधित कथाओं में, जो हमें आनंद प्रदान कर सकती हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या समीक्षा? पांच हुए नहीं क्या, पांच हो गए ना, मटेरियल प्लेजर का स्वभाव पांच हो गए ना। मैं रिपीट करता हूँ, पहला है ट्विंस है, दूसरा है मटेरियल प्लेजर इज लिमिटेड बट लीड्स टू अनलिमिटेड सफरिंग. तीसरा है वो कि स्पिरिचुअल जो भौतिक सुख है वो दिखता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते. और जो आध्यात्मिक सुख है वो दिखता नहीं, आध्यात्मिक आनंद, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो. चौथा है कि ये भौतिक जो सुख है वो नया नहीं है, ओल्ड है. और पांचवा है वो लंबा नहीं, रिमेन क्या कहते हैं, लंबे समय तक स्थायी नहीं है. कुछ दिनों के लिए वो सुख देगा. नई कार है तो 6 महीने के लिए सुख देगी, तो नया दूसरा नया कार आ जाएगा तब इच्छा होगी, नहीं वो दूसरी कार चाहिए. फोन्स के साथ ऐसे हुआ है. फोन्स पहले आते थे, उसके ऊपर एंटेना था, जैसे चेंज हो गए तो वैसे हम चाहते चेंज करना, तो इस नेचर है. तो इसलिए भक्त विचलित नहीं होता. इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भक्त के जीवन में आते भी है कष्ट तो उसको सहन करता है. मात्रा स्पर्शा सुखते य शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनु नित्या तांस्तिक्षस्व भारत. तो भक्त क्या करता है, इस चीज को सहन करता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है. और कोई व्यक्ति, फिर कृष्ण कहते यमीना व्यथयन्ते ते, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता इस सुख और दुख से, तो वो व्यक्ति क्वालिफाइड है भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए.
ये कैसे पता किया जाए कि जो कष्ट है, मन में कष्ट आया, तो ये कष्ट कृष्ण की कृपा है या इस कष्ट को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए?
एक्चुअली जो डिवोटी है वो उसको ये नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है उस जो कष्ट को भगाने के लिए. तो वो क्योंकि जब हम भक्ति में लगते हैं, हाँ, तो क्योंकि पहले तो ये अनुभव करना चाहिए कि ये जेल में हम हैं, तो जेल में क्यों हैं? हाँ, तो उसमें जेल में इसलिए भी डाला जाता है कि आपको पनिशमेंट स्वीकार करनी होगी और रिफॉर्म अपने आप को करना होगा. तो ये दो चीज़ें हैं. आपको पनिशमेंट इसलिए तो जेल में है, यहाँ आकर हमें नहीं सोचना चाहिए कि कष्ट क्यों है. तो ये निश्चित है कि पनिशमेंट यहाँ होगी और आपको रिफॉर्म भी किया जाएगा, आप प्यूरिफाई किया जाएगा यहाँ. तो वो पनिशमेंट कैसे मिलती है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें पनिशमेंट मिलती है. लेकिन जो डिवोटी होता है वो ये जो रिफॉर्म करने वाली प्रोसेस को स्वीकार करता है और उसमें में भी कष्ट आए तो उन कष्टों को भी साथ साथ स्वीकार करता है. हाँ, कष्टों को भी जो प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है उसमें कष्टों को भी स्वीकार करता है वॉलेंटरिली, स्वयं रूप से, और वो कृष्ण की ओर बढ़ता है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहता है. जब कृष्ण देखते हैं कि ये जो डिवोटी है, हाँ, इनको स्वीकार करते हुए प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, मेरी ओर बढ़ रहा है, शुद्ध हो रहा है, तो कृष्ण और शरणागत हो रहा है, तो कृष्ण क्या करते हैं, जो कर्मों के अनुसार जो कष्ट मिलने होते हैं कृष्ण अपने पास रखते हैं. और जैसे हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं उसकी ओर, कष्टों की ओर, तो कृष्ण कर्मा के रिएक्शंस और तेजी से हमें प्रदान करते हैं. तो इसलिए जो भक्त होता है वो इसी को स्वीकार करता है. ये मूड होता है उसका, क्या कि मुझे और अधिक जो कष्ट है वो आने वाले थे, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम कष्ट मुझे प्राप्त कर रहे हो रहे हैं. और वो लेकिन फिर भी कृष्ण सेवा में वो लगा रहता है. और उसकी भावना क्या होती है, भक्त की भावना होती है कि कृष्ण एक मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं, स्कल्प्टर, शिल्पी. तो भक्त सोचता है कि कृष्ण वो शिल्पी के समान है. हाँ, कृष्ण एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कुछ चीज़ कि मुझे इस धराल तक, इस लेवल तक आना है. तो कृष्ण जो कष्ट दे रहे हैं हमारे जीवन में, तो जो शिल्पी होता है वो छन्नी से क्या करता है, जो रूप देना होता है उसे किसी चीज़ को, हाँ, उसके मन में होता है क्या रूप होगा, हाँ, इस पत्थर का, उसके अनुसार वो छन्नियाँ चलाता है और फिर एक फॉर्म प्रकट हो जाता है. तो तो उसी प्रकार हमारे लिए भी है कि कृष्ण हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ लेवल कृष्ण हमसे चाहते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग समस्याएं हमारे जीवन में देते हैं और वो एक शिल्पी की भांति है। तो हमें इस मोड से स्वीकार करना चाहिए और गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें उस एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से डिवोटी डील करता है और वो ये नहीं करता, उसको दूर नहीं करना चाहता, स्वीकार करता, तो कृष्ण अरेंज करते हैं उसके लिए। शास्त्रों में कितने ऐसे उदाहरण हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ऐसे कई सारे देख सकते हैं स्क्रिप्चर्स में। बोल के ही करना चाहिए, मानसिक नहीं करना चाहिए। ये अनुभव कर सकते हैं, इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा मूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हाँ, जैसे हमने कहा था भागवत में कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो देख नहीं पाता अज्ञान के कारण, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इसको देखना चाहिए और रेगुलर रियलिटी को सुनना चाहिए या मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटीज को पढ़ना चाहिए। ये दो चीज़ें, मटेरियल वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसको सुने और रेगुलर पढ़ें। तो श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य या प्रभुपाद के बुक्स हैं हर समय रिमाइंड करते हैं हमें, और भगवान भक्त शास्त्र साधु गुरुज अब वही रिमाइंड करते हैं। इसलिए दो चीज़ें आवश्यक है कि सुने और देखें, हाँ ये सबसे शक्तिशाली चीज़ है। हाँ फिर आप रियलाइज कर सकते हो, हाँ अनुभव कर सकते हो। नहीं इस प्रकार से नहीं स्वीकार करना चाहिए। मैं कहूँ अभी ठंड लग रही है, अभी मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, इस प्रकार से नहीं है। इनसे तो हमें एक साथ साथ मतलब उतना भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाए। प्रयास अच्छा रूप गोस्वामी कष्ट आ रहे हैं, अभी मैं तैयार होता हूँ, तो इस प्रकार से भक्ति करता है। अभी विषय अलग है, बाद में भगवत बोलिए।
जब जब धर्म की हानि होती है तो तब मेरा आना होता है। इसके पूर्व में इतिहास में बहुत बार धर्म की हानि हुई है, जैसे औरंगजेब में जार चंगेज खान और भी लोग आए हैं, एक से हिटलर हुए, उसमें उनका आगमन क्यों
हुआ ना, भगवान का आगमन। कलियुगा में भगवान आए हैं किस चीज में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान है, आगमन हुआ है और उनका विनाश भी हो गया। आपको दिख रहे औरंगजेब और सब लोग विनाश, भगवान आते तो विनाश कर देते हैं। ठीक, हाँ भगवान आते, भक्त आते, साधु आते वध, कलियुगा में वध किया जाता है, उनके हृदय को चेंज करते हैं उनके। हाँ ये लंबा अलग ही चर्चा है इस विषय में। ठीक, श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के पिताई गौर प्रेमानंदे गौरव भक्तवृंद की जय।